एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
और इस गुत्थी को सुलझाने में आज हमारी मदद करेंगे पॉल विल्किंसन का काम। खास तौर पर उनकी किताब है इंटरनेशनल रिलेशंस, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और उसी पर आधारित एक अच्छा सारांश भी है हमारे पास। ये सच में, जैसा आपने कहा, एक छोटी सी बड़ी किताब है।
बिल्कुल।
और आज के समय में तो ये और भी जरूरी हो गया है समझना, है ना?
हाँ, बिल्कुल।
आप देखिए, चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो, या चीन और अमेरिका के बीच की खींचतान, या फिर क्लाइमेट चेंज पर जो बहस चल रही है, ये सब असल में अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही तो है।
सही बात है, और इनका असर हम सब पे पड़ता है रोजमर्रा की जिंदगी में।
हाँ, ये सिर्फ सरकारों या डिप्लोमेट्स का मामला नहीं रह गया अब।
नहीं, अब तो देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था से लेकर हमारे फोन में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी है। तो चलिए, आज विल्किंसन के नजरिए से इस दुनिया को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले, ये पॉल विल्किंसन 1937 टू 2011 थे कौन? मतलब क्यों इनकी बात सुनना जरूरी है?
हाँ, ये जरूरी सवाल है। देखिए, वो ब्रिटेन के एक बहुत जाने माने एकेडमिक थे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, और खास तौर पर अगर कहें तो राजनैतिक हिंसा और आतंकवाद के अध्ययन में उन्हें महारत हासिल थी।
अच्छा।
हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ, जिसे कहते हैं ना, किताबी कीड़ा नहीं थे। वो स्कॉटलैंड की सेंट एंड्रूज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर तो थे ही, लेकिन उन्होंने आतंकवाद और राजनैतिक हिंसा अध्ययन केंद्र CSTPV की स्थापना भी की थी।
ओहो, यानी प्रैक्टिकल साइड भी था।
बिल्कुल, मतलब उन्होंने सिर्फ थ्योरी पर काम नहीं किया, बल्कि दुनिया की जो असल सुरक्षा चुनौतियां हैं उनका भी बहुत गहराई से विश्लेषण किया। तो उनका नजरिया जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ था।
हाँ, और शायद यही चीज उनके काम को खास बनाती है ना, कि वो मुश्किल अकादमिक विचारों को असल दुनिया की समस्याओं से, खासकर ये सुरक्षा और आतंकवाद वाले मुद्दों से जोड़ने में सफल रहे।
सही कहा, उनकी जो पृष्ठभूमि थी उसने उन्हें एक तरह से सैद्धांतिक समझ और व्यावहारिक ज्ञान का एक अनूठा संगम दिया।
और उनकी एक और खूबी बताई जाती है कि वो मुश्किल बातें भी बड़ी साफ और सीधी भाषा में समझा देते थे।
हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए इस तरह की वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन वाली किताब के लिए वो एकदम सही लेखक थे, जो किसी आम इंसान को भी, जिसे इस विषय का पहले से ज्ञान न हो, उसको भी बुनियादी समझ दे सकें। उनका मकसद डराना नहीं, समझाना था। तो अब आते हैं इस किताब पर, इंटरनेशनल रिलेशंस, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इसका असल मकसद क्या है?
देखिए, जैसा नाम से ही जाहिर है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे बड़े और कभी कभी थोड़ा डराने वाले विषय को उन लोगों के लिए आसान बनाना है जो इससे नए सिरे से जुड़ रहे हैं,
जैसे छात्र हो या पत्रकार।
हाँ, या बस कोई भी जिसे दुनिया में क्या चल रहा है ये समझने में दिलचस्पी हो। किताब का जो मूल तर्क है वो ये है कि भाई, अगर हमें आज की दुनिया को समझना है तो हमें ये जानना ही होगा कि देश, और अब तो सिर्फ देश ही नहीं, दूसरे खिलाड़ी भी,
हाँ, नॉन स्टेट एक्टर्स जिन्हें कहते हैं,
बिल्कुल, वो आपस में कैसे बातचीत करते हैं, उनके बर्ताव के पीछे के सिद्धांत क्या हैं, और ये पूरा सिस्टम, ये व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से कैसे बनी है, कैसे विकसित हुई है। विल्किंसन ये नहीं कहते कि सब कुछ ठहरा हुआ है, वो इस क्षेत्र की गतिशीलता पर बहुत जोर देते हैं।
हाँ, और विल्किंसन एक तरह से हमें दुनिया को देखने का एक, क्या कहें, टूलकिट या औजारों का बक्सा देते हैं।
अच्छा कहा।
इसमें इतिहास का सबक है, मुख्य सिद्धांत हैं, जैसे वो रियलिज्म और लिबरलिज्म की बात करते हैं, और कौन कौन से बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं, मतलब एक्टर्स, उनकी समझ है। मकसद ये नहीं कि हमें सारे जवाब मिल जाएं।
नहीं, जवाब देना नहीं।
हाँ, बल्कि ये कि हम सही सवाल पूछना सीखें और दुनिया में जो घटनाएं हो रही हैं उनका खुद विश्लेषण कर सकें। ये किताब एक तरह से हमें सोचना सिखाती है, ये नहीं बताती कि क्या सोचना है।
चलिए, अब थोड़ा किताब के अंदर चलते हैं, कुछ मुख्य हिस्सों पर गौर करते हैं। पहला अध्याय एक बहुत बुनियादी सवाल पूछता है, भाई ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध आखिर है क्या चीज?
हाँ, और यहीं विल्किंसन एक बड़ा जरूरी फर्क बताते हैं देश के अंदर की राजनीति, यानी घरेलू राजनीति, और देशों के बीच की राजनीति में क्या अंतर है।
और वो अंतर, वो एक खास शब्द पर टिका है ना, अराजकता।
एनाकी, हाँ। अब ये शब्द सुनते ही दिमाग में शायद गड़बड़ी, अफरा तफरी, मारकाट, ऐसी तस्वीरें आती हैं।
बिल्कुल, आमतौर पर तो यही मतलब निकलता है,
पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसका मतलब एकदम अलग है।
हाँ, यहाँ अराजकता का मतलब केओस या अव्यवस्था नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है एक वर्ल्ड बॉस या सर्वोच्च विश्व सरकार का ना होना।
कोई ग्लोबल पुलिस नहीं।
हाँ, कोई ग्लोबल पुलिस या ग्लोबल अदालत नहीं है जो देशों को जबरदस्ती नियम मनवा सके। थ्योरी में हर देश अपनी सीमाओं के अंदर संप्रभु है, मतलब सॉवरेन है,
अपने फैसले खुद लेने को आजाद।
बिल्कुल, और अपनी सुरक्षा के लिए भी वो खुद ही जिम्मेदार है। सोचिए, जैसे एक मोहल्ले में सब अपने अपने घर के मालिक हैं, पर कोई एक मोहल्ले का मुखिया नहीं है जो सबके लिए नियम बनाए और उन्हें लागू भी करे।
इसी अध्याय में विल्किंसन मुख्य खिलाड़ियों का भी परिचय कराते हैं। जाहिर है देश, स्टेट्स, फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएन और एनजीओ वगैरह।
हाँ, और ये भी बताते हैं कि इस विषय में हम पढ़ते क्या क्या हैं। युद्ध, शांति, शक्ति, सुरक्षा, कानून, अर्थव्यवस्था, ये सब। ये एक तरह से पूरे विषय की नींव रख देता है, पहला चैप्टर।
अगला अध्याय हमें इतिहास में ले जाता है, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का उदय। विल्किंसन का मानना है कि आज को समझना है तो गुजरे कल को जानना बहुत जरूरी है।
सही बात है।
वो आधुनिक देशों की जो व्यवस्था है उसकी शुरुआत वेस्टफेलिया की संधि, पीस ऑफ वेस्टफेलिया 1648 से जोड़ते हैं।
हाँ, ये यूरोप में एक बहुत लंबे युद्ध के बाद हुई थी संधि, और इसने पहली बार ये सिद्धांत स्थापित किए कि भाई देश संप्रभु होंगे और एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे, नॉन इंटरफेरेंस।
हाँ, यहीं से वो विचार निकला कि हर देश अपने घर का मालिक है।
बिल्कुल। इसके बाद विल्किंसन हमें 19वीं सदी के यूरोप, फिर दो विश्व युद्धों के भयानक असर, लीग ऑफ नेशंस का बनना और फेल होना, और फिर वो शीत युद्ध का दौर।
हाँ, वो बाइपोलर दुनिया।
हाँ, जब दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के दो खेमों में बटी थी। ये पूरा इतिहास दिखाता है कि आज की दुनिया ऐसे अचानक से नहीं बन गई, इसके पीछे एक लंबा सफर है, उतार चढ़ाव हैं। अब आते हैं किताब के शायद सबसे अहम हिस्से पर, तीसरा अध्याय, विश्व राजनीति के सिद्धांत। विल्किंसन यहाँ सिद्धांतों को आप कह सकते हैं अंतिम सत्य की तरह नहीं पेश करते।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो उन्हें दुनिया को समझने के लिए अलग अलग चश्मों या लेंस की तरह देखते हैं, और कोई एक चश्मा सब कुछ नहीं दिखा सकता।
हाँ, ये जरूरी बात है। तो सबसे पहले वो बात करते हैं यथार्थवाद, रियलिज्म की। ये नजरिया क्या कहता है?
ये मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो खेल है वो असल में शक्ति यानी पावर का खेल है।
पावर पॉलिटिक्स, बिल्कुल। देश ही मुख्य खिलाड़ी हैं और वो हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को साधने में लगे रहते हैं, और ये हित अक्सर ताकत बढ़ाने और अपनी सुरक्षा पक्की करने से जुड़े होते हैं। क्योंकि कोई विश्व सरकार नहीं है, वो अराजकता वाली बात, इसलिए देश हमेशा थोड़ा असुरक्षित महसूस करते हैं, दूसरों पर पूरा भरोसा नहीं करते।
और इसलिए सहयोग मुश्किल है और संघर्ष थोड़ा स्वाभाविक सा लगता है इस नजरिए से।
हाँ, और इसी यथार्थवादी सोच से वो सुरक्षा दुविधा, सिक्योरिटी डायलेमा का कॉन्सेप्ट निकलता है।
हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। मतलब अगर एक देश अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बढ़ाता है
तो पड़ोसी देश उसे अपने लिए खतरा समझता है
और वो भी हथियार बढ़ाने लगता है।
नतीजा, दोनों पहले से ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं, भले ही शुरू में किसी का इरादा हमला करने का ना रहा हो। ये एक खतरनाक चक्रव्यूह बन सकता है।
बिल्कुल।
लेकिन क्या दुनिया सिर्फ शक्ति और संघर्ष का ही अखाड़ा है? यहीं पर दूसरा नजरिया आता है, उदारवाद, लिबरलिज्म।
हाँ, जो थोड़ा ज्यादा आशावादी है।
हाँ, कह सकते हैं। उदारवादी मानते हैं कि सिर्फ शक्ति ही सब कुछ नहीं है, सहयोग भी संभव है, और इसके कई रास्ते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यूएन वगैरह, देशों के बीच बढ़ता हुआ व्यापार, आपसी निर्भरता
और लोकतंत्र का फैलना। उदारवाद का एक बड़ा तर्क है लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, कि जो लोकतांत्रिक देश हैं वो आमतौर पर आपस में नहीं लड़ते।
हाँ, वो अपने मतभेद बातचीत और नियमों के जरिए सुलझाने की कोशिश करते हैं।
इसके अलावा विल्किंसन संक्षेप में कुछ और नजरियों का भी जिक्र करते हैं, जैसे इंग्लिश स्कूल है जो एक अंतर्राष्ट्रीय समाज की बात करता है, साझा नियमों वाला, या रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, जो विचारों, पहचान और जो नॉर्म्स होते हैं उनकी भूमिका पर जोर देता है।
हाँ सार, यही है कि दुनिया को समझने के लिए हमें कई चश्मों की जरूरत पड़ती है, कोई एक फिट नहीं बैठता। चौथा अध्याय, विश्व राजनीति में कर्ता, शक्ति और धन, हमें सिद्धांतों से हटाकर असल दुनिया के खिलाड़ियों पर लाता है। विल्किंसन मानते हैं कि देश, मतलब नेशन स्टेट, आज भी सबसे ताकतवर खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं।
हाँ, वो तो है ही।
लेकिन अब मैदान में और भी कई अहम खिलाड़ी आ गए हैं, जिन्हें हम गैर राज्यकर्ता, नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं।
इनमें कौन कौन शामिल हैं? जैसे अंतर सरकारी संगठन हो गए, आईजीओज हो गए, यूएन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ,
जिन्हें देशों ने मिलकर बनाया है।
हाँ, ताकि जो सामूहिक समस्याएं हैं उनका हल निकाला जा सके। फिर हैं गैर सरकारी संगठन, NGOs जैसे रेड क्रॉस है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस,
जो मानव अधिकार, पर्यावरण जैसे खास मुद्दों पर काम करते हैं और सरकारों पर असर डालने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल, और आज के जमाने में हम बहुराष्ट्रीय निगमों MNCs को कैसे भूल सकते हैं।
हाँ, बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, तेल कंपनियां,
इनकी आर्थिक ताकत तो कई देशों से भी ज्यादा है और इनके फैसले वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर डालते हैं।
सही कहा।
इसी अध्याय में विल्किंसन शक्ति की अवधारणा को थोड़ा और खोलते हैं कि शक्ति का मतलब सिर्फ फौज या हथियार यानी हार्ड पावर ही नहीं होता।
हाँ, वो जोसेफ नाय का सॉफ्ट पावर वाला विचार।
बिल्कुल, वो भी बहुत अहम है, यानी किसी देश की संस्कृति, जैसे भारत का योग है या बॉलीवुड है, या उसके राजनीतिक मूल्य या उसकी विदेश नीति का जो आकर्षण है, उससे दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता।
हाँ, बिना जोर जबरदस्ती के अपनी बात मनवाने का तरीका।
बिल्कुल, अब आते हैं पांचवें अध्याय पर, युद्ध और शांति। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सबसे बुनियादी और दुखद पहलू है शायद। युद्ध होते क्यों हैं?
विल्किंसन इसके कारणों को अलग अलग विश्लेषण के स्तरों से देखते हैं। क्या ये किसी नेता की सोच का नतीजा है, मतलब व्यक्तिगत स्तर, या देश की अंदरूनी राजनीति का नतीजा है, राज्य स्तर, या फिर पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बनावट ही ऐसी है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली स्तर।
इसमें पारंपरिक युद्धों की बात तो है ही जो देशों के बीच होते हैं।
हाँ,
साथ ही गृह युद्ध और आजकल जो नए युद्ध कहे जाते हैं।
हाँ, जिनमें अक्सर पहचान का मुद्दा हावी होता है, जातीय, धार्मिक वगैरह, और आम नागरिकों को ज्यादा निशाना बनाया जाता है।
और साथ ही संघर्ष को रोकने या संभालने के तरीकों पर भी चर्चा है, जैसे डिप्लोमेसी है, पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं, और वो निवारण वाला तर्क, मतलब दुश्मन को इतना डरा दो कि वो हमला करने की सोचे ही नहीं।
छठा अध्याय बात करता है अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन की। ये उन कोशिशों को देखता है जो इस अराजक दुनिया में थोड़ी व्यवस्था लाने के लिए की जाती हैं। तो क्या कोई दुनिया का कानून है?
हाँ, है तो। अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो संधियों से, रिवाजों से बनता है, और ये व्यापार से लेकर युद्ध के नियमों तक बहुत कुछ तय करता है, जैसे जिनेवा कन्वेंशन।
लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी,
वही, कोई ग्लोबल पुलिस नहीं है जो इसे जबरदस्ती लागू करवा सके।
हाँ,
फिर भी ज्यादातर देश ज्यादातर समय इसका पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपसी व्यवहार को थोड़ा प्रिडिक्टेबल बनाता है, भरोसेमंद बनाता है। इसी में संयुक्त राष्ट्र UN की भूमिका पर विस्तार से बात होती है, उसकी कामयाबियां भी गिनाई जाती हैं और नाकामयाबियां भी। उसे एक जरूरी मगर अपूर्ण संस्था की तरह देखा जाता है। सातवां अध्याय, नया एजेंडा, वैश्वीकरण और उसके परिणाम। ये चर्चा को सीधे 21वीं सदी में ले आता है। विल्किंसन का तर्क है कि शीत युद्ध के खत्म होने और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन ने,
मतलब दुनिया भर में व्यापार, सूचना, पैसा, लोगों की बढ़ती आवाजाही,
हाँ बिल्कुल, इसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पूरा एजेंडा ही बदल कर रख दिया है।
बिल्कुल, अब सिर्फ देशों की आपसी लड़ाई या संधि ही एजेंडा नहीं है। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां सामने आ गई हैं जो किसी एक देश की सीमा में नहीं बनती।
जैसे?
जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज, महामारी COVID-19 ने तो दिखाई दिया।
हाँ, वो तो बहुत बड़ा उदाहरण है।
वैश्विक आर्थिक संकट या फिर सप्लाई चेन में रुकावटें, जिनका असर सीधा हमारी चीजों की कीमतों पर पड़ता है। इन्हें कोई अकेला देश हल नहीं कर सकता।
सही बात है, और इसी माहौल में मानवीय हस्तक्षेप, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन और मानव सुरक्षा, ह्यूमन सिक्योरिटी जैसे विचार उभरे हैं। ये बहस होती है कि क्या दुनिया को किसी देश में हो रहे बड़े पैमाने पर मानवाधिकार हनन रोकने के लिए दखल देना चाहिए, वो रक्षा करने की जिम्मेदारी R2P वाला कॉन्सेप्ट।
हाँ, ये काफी विवादास्पद भी रहा है।
हाँ बिल्कुल, ये सोच पारंपरिक राष्ट्रीय सुरक्षा से, जिसका मतलब था सिर्फ देश की सीमा बचाना, उससे आगे बढ़कर मानव सुरक्षा पर जोर देती है, यानी लोगों को हिंसा, भूख, बीमारी से बचाना।
और अंत में आठवां अध्याय, निष्कर्ष, विश्व राजनीति का भविष्य। ये पूरी बात को समेटता है। विल्किंसन कोई भविष्यवाणी नहीं करते, ये अच्छी बात है।
हाँ, वो भविष्यवाणियों से बचते हैं, लेकिन वो उन बुनियादी सवालों और तनावों को सामने रखते हैं जो आगे भी बने रहेंगे, जैसे क्या देश ही मुख्य खिलाड़ी रहेंगे या नॉन स्टेट एक्टर्स और हावी होंगे?
क्या दुनिया क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े खतरों से मिलकर निपट पाएगी? ये सब बड़े सवाल हैं।
तो इस पूरी चर्चा से कुछ खास बातें या संदेश क्या निकलते हैं, अगर समेटना चाहें तो?
मेरे लिए पहला और सबसे अहम है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की अराजक प्रकृति को समझना।
हाँ, वो वर्ल्ड बॉस का न होना।
बिल्कुल, ये जानना ही देशों के व्यवहार की चाबी है। ये उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा चौकन्ना रखता है। दूसरी बड़ी बात, मेरे हिसाब से राज्य बनाम गैर राज्यकर्ताओं का जो बदलता समीकरण है, देश आज भी सबसे ताकतवर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यूएन से लेकर बड़ी टेक कंपनियों और यहां तक कि आतंकी गुटों तक, दूसरे खिलाड़ी भी अब वैश्विक मंच पर अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनका असर बढ़ रहा है।
तीसरा, सिद्धांत सिर्फ सिद्धांत नहीं है बल्कि दुनिया देखने के चश्मे हैं। यथार्थवाद हमें शक्ति की राजनीति दिखाता है, उदारवाद सहयोग की संभावना है। कोई एक नजरिया सही या गलत नहीं है, हमें इन अलग अलग चश्मों का इस्तेमाल करके पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करनी चाहिए।
चौथा, वो संघर्ष और सहयोग के बीच का शाश्वत तनाव। दुनिया में हमेशा ये खींचतान चलती रहती है, एक तरफ सत्ता की होड़, दूसरी तरफ आपसी फायदे और संस्थाओं के जरिए शांति और सहयोग बनाने की कोशिश। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक स्थायी चरित्र है, लगता है।
और पांचवां, बदलता हुआ वैश्विक एजेंडा। पारंपरिक सुरक्षा मुद्दों के साथ साथ अब पर्यावरण, स्वास्थ्य, मानवाधिकार, साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दे भी उतने ही या शायद ज्यादा अहम हो गए हैं, और भारत में हम इसे रोज महसूस करते हैं।
हाँ बिल्कुल, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, विदेशों से आने वाले निवेश का हमारी नौकरियों पर असर,
या फिर किसी वैश्विक महामारी का हमारी जिंदगी पर प्रभाव,
सब कुछ जुड़ा हुआ है।
विल्किंसन के काम में सीधे कोट करने लायक पंक्तियां शायद ना मिलें क्योंकि ये परिचयात्मक किताब है, लेकिन उनके विचारों का सार पकड़ने वाले कुछ कथन जरूर हैं। जैसे पहला क्या कहेंगे?
मेरे ख्याल से ये, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की पहचान अराजकता है, एक केंद्रीय विश्व सरकार का ना होना। यही स्थिति हर देश की प्रेरणाओं, डर और कामों को बुनियादी तौर पर शक्ल देती है। यही समझना ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को घरेलू राजनीति से अलग करता है।
हाँ, यहाँ नियम बनाने वाला कोई नहीं, सब अपने अपने नियम बनाने की कोशिश में हैं, या बने हुए नियमों को अपने हिसाब से मोड़ने की।
दूसरा अहम विचार
शायद ये कि यथार्थवाद और उदारवाद जैसे सिद्धांतों को एकमात्र सच्ची व्याख्या के मुकाबले में नहीं देखना चाहिए, बल्कि अलग अलग चश्मों की तरह देखना चाहिए जो इस जटिल दुनिया के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालते हैं।
हाँ, ये हमें किसी एक सोच में बंधने से बचाता है और लचीलापन देता है सोचने में।
और तीसरा, ग्लोबलाइजेशन पर। वैश्वीकरण एक दोधारी तलवार है, इसने दुनिया को जोड़ा है, व्यापार और सूचना के नए रास्ते खोले हैं, लेकिन साथ ही नई कमजोरियां भी पैदा की हैं। आतंकवाद, आर्थिक संकट, बीमारियां, ये खतरे अब ज्यादा तेजी से फैल सकते हैं।
हाँ, ये आज के समय की सच्चाई है, मौके भी हैं और जोखिम भी बहुत हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का हमारी आम जिंदगी में क्या मतलब है, मतलब हम इन विचारों का क्या करें।
हाँ, ये प्रैक्टिकल सवाल है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये हमें खबरों को बेहतर समझने वाला पाठक या दर्शक बनाते हैं।
हाँ, जब हम किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि के बारे में पढ़ते हैं, या सुरक्षा परिषद में वीटो की खबर सुनते हैं, या किसी ट्रेड वॉर के बारे में,
तो हम थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या चल रहा होगा, कौन से हित टकरा रहे होंगे, कौन सा सिद्धांत काम कर रहा होगा शायद।
दूसरी बात, ये वैश्विक नागरिकता की भावना को समझने में मदद करता है।
कैसे?
देखिए, जब हम जानते हैं कि दुनिया की समस्याएं कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं और विदेश नीति के फैसले कितने जटिल होते हैं, तो हम शायद दुनिया के प्रति थोड़े ज्यादा जिम्मेदार और विचारशील नागरिक बन सकते हैं। कम से कम अपनी सरकार की नीतियों पर सवाल तो उठा ही सकते हैं।
हाँ, ये भी है। तीसरा, ये हमारी आलोचनात्मक सोच को तेज करता है।
मतलब
किसी भी घटना को सिर्फ एक नजरिए से देखने के बजाय जब हम उसे यथार्थवादी चश्मे से भी देखें, उदारवादी चश्मे से भी देखें, तो हम मुद्दे की गहराई तक पहुंच पाते हैं, सतही बातों से बचते हैं, हम क्यों पूछना सीखते हैं।
सही।
और आखिर में ये हमारे निरी नजरिए को भी प्रभावित कर सकता है, नहीं? चाहे वो तेल की कीमतें हों,
या हमारे फोन का बनना हो,
या फिर हमारे देश की किसी दूसरे देश के साथ दोस्ती या दुश्मनी का हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है। दुनिया वाकई में, जैसा आपने कहा, बहुत जुड़ी हुई है। तो अगर मुझसे पूछें इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ा सबक क्या है, तो मेरे लिए ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया भले ही बहुत जटिल और कभी कभी निराशाजनक लगे,
हाँ लगती तो है,
लेकिन ये पूरी तरह बेतरतीब या समझ से परे नहीं है। विल्किंसन जैसे विचारक हमें इसे समझने के औजार देते हैं, वो अराजकता में भी कुछ पैटर्न, कुछ तर्क देखने में मदद करते हैं।
और मेरे लिए अहम बात यह है कि कोई एक जवाब या एक सिद्धांत काफी नहीं है, दुनिया को समझने के लिए खुला दिमाग और कई नजरियों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। ये हमें सिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध असल में लगातार चलने वाले तनावों जैसे संघर्ष और सहयोग, आजादी और निर्भरता, इनको साधने की, इनको मैनेज करने की एक कभी न खत्म होने वाली कोशिश है। विल्किंसन का काम हमें दुनिया का एक ज्यादा जागरूक और सोचने समझने वाला पर्यवेक्षक बनने की प्रेरणा देता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।